अध्याय 11 ग जयानक का पृथ्वीराज विजय। जयानक 1200 ईस्वी के आसपास ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। ये संभवतः कश्मीरी थे। इनका लिखा हुआ पृथ्वीराज विजय महाकाव्य अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसमें अजमेर और दिल्ली के चौहान राजाओं के वर्णन की पृष्ठभूमि में दिल्ली पर पृथ्वीराज के विजयों का वर्णन है। कश्मीरी चरित लेखकों की परंपरा में जयानक का नाम लिया जाता है। यद्यपि पृथ्वीराज विजय नामक काव्य के पांडुलिपि में जयानक का नामोल्लेख नहीं किया गया है, परंतु इसके विविध विखरे उदाहरणों को जयानक की रचना स्वीकारते हुए हरिविलास सादा जैसे लोगों ने पृथ्वीराज विजय को जयानक की रचना माना है। जयानक कश्मीरी ब्राह्मण थे और भार्गव कुलोत्पन्न थे। यह काव्य संभवतः तराइन के प्रथम युद्ध 1191 तथा तराइन के द्वितीय युद्ध 1193 के मध्य 1192 में लिखी गई, क्योंकि इसकी पुष्टि कालांतर 1200 के कश्मीरी काव्य जयद्रथ द्वारा उद्धृत इसकी पंक्तियां हैं। पृथ्वीराज विजय के साक्ष्यों में ज्ञात है कि जयानक कश्मीर से चहमान दरबार में तराइन के प्रथम युद्ध के पूर्व आए थे। चहमान नरेश, राजकवि पृथ्वी भट्ट तथा अन्य अधिकारियों द्वारा जयानक का स्वागत किया गया। जयानक एक कवि, विद्वान तथा आगमिक एवं वैदिक परंपराओं के ज्ञाता थे। काव्य से ज्ञात है कि वे ज्योतिष, तर्क एवं व्याकरण के ज्ञाता थे तथा कादंबरी, किरातार्जुनीयन तथा रघुवंश से प्रभावित थे। रामायण ने जयानक को विशेष रूप से पृथ्वीराज विजय लिखने की प्रेरणा प्रदान की। जैसा कि उन्होंने उपोद्धात में भास, व्यास और वाल्मीकि की वंदना की है, क्योंकि आगे की पंक्तियों में आदि कवि का उल्लेख किया है। जयानक ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही पृथ्वीराज विजय नामक काव्य ग्रंथ की रचना किया। काव्य के अंतर्गत कवि अपने को ऋषि उपमन्यु के कुल में उत्पन्न स्वीकारता है, जिसका पालन पोषण देवी शारदा, ज्ञान की देवी ने किया। अपने काव्य ग्रंथ पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने अपने पूर्ववर्ती काल से प्रचलित विजय काव्य परंपरा से ग्रहण किया। प्राचीन साहित्यिक महाकाव्यों में पाताल विजय या जाम्बवती विजय, युधिष्ठिर विजय, हरि विजय नामक काव्य ग्रंथ प्रचलित थे, जिनमें विजेता के चरित्र, वंश और विजयों का विवरण कविता रूप में लिखे गए हैं, जिनसे जयानक ने अपने पृथ्वीराज विजय के रचना में प्रेरणा लिया। मूल कथा। पृथ्वीराज विजय की मूल कथा वाल्मीकि के रामायण के आधार पर लिखी गई। पृथ्वीराज तृतीय एवं चौहान नरेश इतिहास में प्रसिद्ध हैं, जिनकी ऐतिहासिकता अनेक विधि साक्ष्यों से प्रमाणित है। जयानक ने पृथ्वीराज तृतीय का चरित्र काव्य वाल्मीकि रामायण के राम के रूप में अपने नायक को मानकर लिखा है। चहमान नरेश को राम तथा काव्य के अन्य चरित्र पुरुषों को राम के सहायक रूप में प्रस्तुत किया है। इस तिथि विहीन प्रकार के आख्यान पूर्ण काव्य की आधारशिला ब्रह्मा के द्वारा विष्णु ने चहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय के रूप में अवतार लेने का उल्लेख किया गया है। इस अवतार का प्रयोजन मलेच्छों को भारत भूमि से समाप्त करना है। काव्य में ज्योतिषियों द्वारा या भविष्यवाणी करना कि सोमेश्वर के पुत्र रूप में राम का अवतार होगा, जैसा कि त्रेता में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय की माता कर्पूर देवी के गर्भधारण के समय, जिस प्रकार रामायण में राम के गर्भधारण काल में विभिन्न शुभ नक्षत्रों के उदय होने का वर्णन है, उसी प्रकार जयानक ने भी वर्णन किया है। पृथ्वीराज का जन्म ज्येष्ठ द्वादशी को हुआ था। कवि ने पृथ्वीराज का जो चरित्र वर्णन किया है, उसमें उसका दोहरा व्यक्तित्व एक रामायण के राम के रूप में तथा दूसरा चहमान वंशी पृथ्वीराज तृतीय के रूप में। इस वर्णन में राम में अवतारी पुरुष के रूप में पृथ्वीराज का चित्रण किया गया है। पृथ्वीराज विजय में जयानक ने राज्य मंत्रियों कदम्ब वास तथा भुवनयिक मल्ल को क्रमशः हनुमान और गरुड़ के रूप में तथा पृथ्वीराज को राम के रूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार 11वें सर्ग में कवि ने एक नए चरित्र तिलोत्तमा को प्रस्तुत किया है, जो सीता राजश्री के रूप में चित्रित है। इस राज्य लक्ष्मी तिलोत्तमा की प्राप्ति का प्रयास प्रतीकात्मक रूप से राज्य प्राप्ति का संकेत है। यह कथानक बृहत कथा से ग्रहित ज्ञात होता है। संपूर्ण कथानक को डॉक्टर पाठक ने चरणों में विभाजित किया है। प्रारंभ चाहमान वीर को सूत्रधार रूप में, द्वितीय चरण प्रयास के अंतर्गत ज्योतिषियों द्वारा सोमेश्वर के पुत्र के रूप में राम का अवतार लेना, तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण में संभावनाएं और सफलता के अंतर्गत सोमेश्वर की राज्य प्राप्ति, तत्पश्चात पृथ्वीराज का शाकंभरी का सिंहासन आरूढ़ होना, चतुर्थ चरण में निश्चयन और सफलता के अंतर्गत कथा सहसा अवरुद्ध हो जाती है। अंतिम भाग में पृथ्वीराज द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारी मुज अलाउद्दीन मोहम्मद गोरी पर विजय और गंगा मैदान की कुमारी तिलोत्तमा की प्राप्ति अंतिम चरण है। इस प्रकार मोहम्मद गोरी को रावण के प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत कर उसकी पराजय तिलोत्तमा रूप में सीता की प्राप्ति ही इस कथा का अंत है, जिसमें पृथ्वीराज कदम्बवास भुवनैक मल्ल जयानक गंगा के मैदान की कुमारी मोहम्मद गौरी क्रमशः राम हनुमान गरुण वाल्मीकि सीता तथा रावण के रूप में अभियान करते हैं। साम्राज्यवादी इतिहास की परंपरा। जयानक का काव्य पृथ्वीराज विजय का राजपूत काव्य में प्रचलित साम्राज्यवादी इतिहास परंपरा की एक कड़ी है। कवि इतिहासकार के रूप में तत्कालीन अनेक इतिहासकारों ने इस परंपरा का पालन किया। इस परंपरा में चामानों की उत्पत्ति, वंशावली, वंश विस्तार एवं चक्रवर्तित्व का विवरण दिया गया है। पृथ्वीराज विजय में चामानों की उत्पत्ति सूर्यवंश से प्रमाणित किया गया है, जो अपने चरित नायक राम पृथ्वीराज द्वितीय से संबद्ध करता है। परंतु डॉक्टर पाठक चामानों को अभिलेखों के आधार पर वत्स गोत्र स्वीकारते हैं, जो ब्राह्मण थे। पृथ्वीराज विजय में चामानों राजपूतों की उत्पत्ति का नया सिद्धांत ब्रह्म क्षत्र का प्रतिपादन किया गया है, जो इतिहास पुराण की परंपरा में प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। इस प्रकार के इतिहास लेखन में मिथकों के माध्यम से मध्यकालीन इतिहासकारों ने ब्रह्म क्षत्र के सिद्धांत का मिश्रण कर साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का कार्य राजदरबारों में किया। यही परंपरा पृथ्वीराज विजय में दिखाई देती है कि एक ओर पृथ्वीराज तृतीय को राम के रूप में इक्ष्वाकु वंश के चामानों को जोड़ती है, दूसरी ओर इतिहास पुराण की वत्स गोत्री परंपरा का भी समायोजन किया गया है। पृथ्वीराज विजय में वंश परंपरा। विजोलिया लेख के तृतीय भाग में एक प्रकार की राजावली प्रस्तुत की गई है। सामंत से लेकर अजय देव तक का वर्णन लगभग तीन अवतारों में दी गई है, परंतु विजोलिया अभिलेख की राजावली से भिन्न वंशावली पृथ्वीराज विजय में दी गई है, जो साम्राज्यवादी संप्रदाय के चाहमान इतिहास लेखकों द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज विजय में अभिलेखों में प्रदत्त राजावली से 10 गुना अधिक विवरण दिया गया है, जो राजनैतिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अजमेर की स्थापना किया गया है। पृथ्वीराज में मात्र राजाओं का नामोल्लेख नहीं है, वरन राजाओं से संबंधित घटनाओं का भी विवरण, साथ ही साथ समकालीन उन नरेशों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने तत्कालीन मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष का काव्य में ऐतिहासिक विवरण भी दिया है, जो तत्कालीन इतिहास लेखन की अपनी मध्यकालीन विशिष्ट शैली रही है। डॉक्टर गोविंद चंद पांडे का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि इसकी मुख्य कथा वस्तु यह है कि तुर्कों ने आक्रमण करके मंदिरों इत्यादि का विध्वंस किया, जिसका प्रतिभार पृथ्वीराज द्वितीय ने विष्णु के रूप में अवतार लेकर किया। 7वीं शताब्दी से उसका इतिहास अधिक प्रामाणिक होने लगता है तथा अन्य स्रोतों एवं अभिलेखों से उसकी सूचनाओं का समर्थन है। डॉक्टर पांडे ने गंगा के मैदान की कुमारी को, जिसे सीता कहा गया है, उसे संयोगिता भाग्य देवी स्वीकारते हैं। जानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के चामानों के पूर्ववर्ती इतिहास का विवरण कई सर्गों में लिखा है। ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रंथ में अनुलिखित तथ्य विशेष धातव्य है। एक, चामानों का पूर्ववर्ती इतिहास, जिसकी प्रामाणिकता 7वीं शताब्दी ईस्वी से होती है। 2, जानक ने चामान नरेशों को सूर्य वंश से संबद्ध किया है। 3. पृथ्वीराज तृतीय ने तुर्क आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध किया था और विजयी हुआ था। 4. चाहमान को विष्णु का अवतार स्वीकारा है। 5. पृथ्वीराज तृतीय की भी विष्णु के अवतार थे। 6. पृथ्वीराज को गंगा घाटी के मैदान की कुमारी संयोगिता भाग्य के रूप में प्राप्त हुई थी। 7. पृथ्वीराज तृतीय का इस धरती पर अवतरण का मूल प्रयोजन तुर्कों का विनाश करना था। 8. जयानक ने इतिहास लेखन में घटनाओं को के घटित होने को दैवी कारण मानता है। 9. काव्य ग्रंथ में अति मानवीय घटनाओं का सहारा लेता है। इस प्रकार जयानक का पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ लेखन का प्रयास करता है।